150 मिलियन रियाल बराबर 15 मिलियन तुमान मोहसिन बाबाई साहब के नाम, अली रज़ा फ़हीम के कर्ज़ के सिलसिले में। अच्छा, ये लीजिए।
फहीम साहब को सलाम कहिएगा और ये भी कहिएगा कि उनको जेल में भिजवा कर हम खुश नहीं थे।
बहुत शुक्रिया।
अब जब हमारा पैसा कैश हो गया है, ये चेक अपने पास रखें, शायद ज़रूरत पड़ेगी। अगले महीने आके ले लूँगा।
बहुत शुक्रिया, ये लीजिए आप।
यकीन करें शाह साहब, मुझे डर था कहीं पैसे ना चले जाएं। अब जब यकीन हो गया कि मुझे मिल जाएंगे तो कोई बात नहीं, एक महीने बाद ही सही। अपने पास रखें, मैं आकर ले लूँगा बाद में,
बहुत शुक्रिया।
कोई तकल्लुफ तो नहीं
नहीं
है।
नहीं बहुत शुक्रिया।
जैसा आप बेहतर समझें। फहीम साहब से कहिएगा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ मेरे पास आ जाए।
ज़रूर ज़रूर। खुदा हाफिज़।
और कोई हो?
नहीं बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़। चलो, अब कोई भी नहीं बचा।
कोई खास बात नहीं है, थोड़ा बीपी लो हो गया है। देखो बेटी, वो फ़ोन जो उस दिन मेरे बर्थडे के दिन आ रहे थे, उनका उसके बाहर जाने से ताल्लुक है ना? नहीं, थोड़ा सा और पियो, तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं अपना सवाल दूसरे अंदाज में पूछता हूँ, क्या हुआ जो फरजाद रात में सोया और सुबह कहने लगा मैं जा रहा हूँ इतनी आसानी से?
बाबा यकीन करें, वो स्मगलर नहीं है।
अरे भाई, तो मैंने कब कहा, वो तो ढूंढने आए थे और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। असल में मैं, चलो छोड़ो। लाओ जरा देखें, इसमें कुछ मिलता है कि बाप बेटी एक पार्टी करें। यहां तो सब कुछ है। जरूर आ जीता है, अब तो सब इकट्ठा हो गए। उठो, उससे कहना कि जल्दी ऊपर आए। अरे भाई उठो, अब वो हंगामा मचाएगी कि मुझे इतनी देर तक क्यों नीचे खड़ा रखा। ठीक है, मैं खुद ही जाता हूं। जी थाने से हैं, वारंट पेपर लाए हैं।
क्या अब भी यकीन कर लूं कि तुमको रफी के स्मगलिंग के बारे में कुछ नहीं पता?
वो मरहूम तो कभी कभी हफ्तों भर मुझे नहीं बुलाते थे। मैं तो 24 घंटे उनके साथ नहीं रहता था।
बचपन से उनके साथ थे, तुम्हारे बाप जैसे थे, तुम्हारा खर्चा पानी देते थे, तुम्हारे लिए इश्क छोड़ा है और इस वक्त भी उनके बेटे के मोहतमिद हो और उनकी बीवी और बेटी के भी। क्यों हुआ, आप डर गए?
मैं अब भी वही कहता हूँ कर्नल साहब, अगर मैं रफ़ी साहब के इस काम के बारे में जानता भी तो दखल अंदाजी ना करता। आप तो मुझे पहचानते हैं, मैं तो सर झुका के आता हूँ सर झुका के जाता हूँ कि मुझसे क्या मतलब। मैं अगर इन कामों के पीछे दौड़ता तो अली रज़ा फ़हीम के साथ जाकर ऑफिस ऑफिस थोड़ी खोलता जो मामूली पैसों के लिए इस तरह से फंसूँ। आप तो जानते ही हैं। और हाँ कर्नल साहब, अगर मैं इन नवादरात की जगह के बारे में जानता तो इन्हें बेचना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था और इसके पैसे मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी थे। लेकिन मैं जल्दी मरना नहीं चाहता।
क्या मतलब?
यानी अगर मैं इसका अहल होता तो खंजर इस वक्त आपके पास ना होता।
और उसका बेटा?
नहीं कर्नल साहब नहीं, फरजाद तो ऐसे कामों के लिए बच्चा है।
तो फिर कहाँ गायब हो गया है? शायद कुछ और सामान भी थे जिन्हें उठाकर फौरन यहाँ से भाग गया है।
मैं क्या बताऊँ, मैं भी नहीं समझ पाया क्यों एक बैग चला गया। कह रहा था बहुत ज़रूरी काम है, उसे जाना ही है। आप क्यों उसकी बीवी से नहीं पूछते, आज़र साहिबा से?
मुझे काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है।
जी अब मैं जा सकता हूँ। इन स्मगलरों के डर से कुछ दिन मुझे छुपना पड़ेगा जब तक कि मामला निपटना जाए।
जहाँ भी जाओगे हमसे राबते में रहना, समझे?
जी ठीक है जनाब, अब चलता हूँ।
जा सकते हो।
शम साहिबा ज़रा एक मिनट के लिए आइएगा।
जी फरमाइए।
मैं आज नहीं आऊँगा, अली रज़ा के साथियों के साथ उसके इस्तकबाल के लिए जाना है। आप भी अगर चाहें तो जल्दी जा सकती हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया।
ये लीजिए।
ये क्या है?
तेहरान में गाड़ी का सबसे अच्छा कलर सफ़ेद है, चूँकि इसके गंदे और साफ में कोई फ़र्क नहीं। एक्सीडेंट भी अगर हो तो आसानी से पता नहीं चलता और ज़्यादा भी हैं, इसलिए आदमी को कोई घूरता नहीं है।
आपका मतलब समझ नहीं पाई।
अली रज़ा की रहाई के पैसे पूरे हो गए। आपकी और शम साहब की मोहब्बत के बारे में अली रज़ा को बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कोई पैसे खर्च ना हो जाएं तो एक गाड़ी ले ली आपके लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया शायन साहब।
सिर्फ याद रहे कि इस गाड़ी का पैसा आपके पैसे से कुछ ज़्यादा था और बाकी कर्जा है आपकी तनख्वाह से कम करूँगा।
फिर भी शुक्रिया शायन साहब।
मेरी तरफ से शम साहब को सलाम कहिएगा।
जरूर।
जनाब क्या वही खतरनाक जानी इंसान हैं जिनको ढूंढने 20 साल लगे और पिछले 20 वर्षों में आप जेल में
हैं? नहीं, सिर्फ चेहरा उससे मिलता है।
अरे उसके जाहिर बातें पर खड़े आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जलाल चा।
जल्दी करो, शुक्र से बार फरीदा भी इंतजार कर रही है।
जरूर।
अली रजा, अब तुम अपनी यादों को शाया करोगे ना?
अगर हमारे पास नहीं रहे तो बेमुरवती होगी वाकई। बस करो तुम लोग, यादें कैसी नहीं रजा, वाकई दो जी तुम्हें ना।
आप शुक्र साहिबा से तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें लेनी है और जो छपा लेंगे।
क्या बिकेगी वाकई? और हाँ, तुम्हारा एक बाउंस चेक भी उस पर छाप देंगे।
एक अच्छा सा नाम रखेंगे, एक बिल्कुल नया। जैसे कैसे हो सकता है कि 70 मिलियन तुमान को एक सेकेंड में। मैं मजाक कर रहा था, माफ कीजिएगा शहन साहब, कोई कैसेट वगैरह लगाइए।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान।
वालेकुम सलाम जी तेरे बेटा।
क्यों उतरते नहीं? कुछ ना कुछ तो होगा ही, खा लेंगे ना साथ में।
नहीं अली रजा, शुक्रिया, हमें जाना है, काम है। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम।
अगर दो दिन और तुम्हारे साथ यूं ही टाइम बर्बाद करते रहे तो हमें भी वहाँ पे तुम्हारी वो जेल में भरनी पड़ेगी। आप भी नहीं आएंगे?
नहीं, बेहतर है आप अपनी अम्मी के साथ कुछ देर अकेले रहें।
ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
फरीदा साहिबा, मैं इनको पहुंचाऊं फिर आता हूं।
अच्छा शायद साहब, अंदर आइए, आपकी कोई खिदमत करें।
कैसेट नई और बेहतरीन है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया।
कोई जल्दी नहीं है, बस इतने इकट्ठा कर पाए थे, माफ कीजिएगा।
नहीं, बिल्कुल मुनासिब था, अगर जरूरत पड़ी तो तुमसे जरूर कहूंगा।
जी ठीक है, अच्छा चलते हैं।
बच्चों अपना ख्याल रखना।
जरूर।
कीजिएगा कर्नल आकाशा, को रूम कौन सा है?
यहाँ से राइट।
शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम आज़ाद साहिबा, आपको भी बुलाया है।
वालेकुम सलाम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या हाल बना रखा है?
फरजाद साहब की मुसीबत मेरे सर आन पड़ी है, मेरा तो बहुत दिनों से यहाँ ना जाना है।
फरजाद? फरजाद क्यों?
बाद में बताऊंगा। याद रखिएगा, जो भी आपसे पूछे कहिएगा मुझे कुछ नहीं पता।
क्यों?
जहां तक हो सके ऐसा करना है कि उनका हाथ फरजाद तक ना पहुंचे, समझ गई है ना?
सलाम अलैकुम आकाशा साहब।
अलैकुम सलाम मोहतरमा, बैठे। चाय लेंगे या पानी?
कुछ नहीं।
शुरू कर सकते हैं? देखिए मोहतरमा, मैं जानता हूं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप हमारा साथ दें तो ये मामला जल्दी खत्म हो सकता है।
मैं कुछ नहीं जानती।
मलिकी साहिबा, शायान साहब की वजह से मैं आपको जानता हूं। अफसोस है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कभी कभी यहां आपसे मिलना पड़ा है। कोशिश करें मेरे सवालात का बिल्कुल सही जवाब दें। आपके शौहर कहाँ हैं?
सफ़र पे हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ा।
कैसा काम?
कुछ कॉलेज के काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं।
उनका कोई फ़ोन नंबर है?
वो खुद ही फ़ोन करते थे।
उन्हें फ़ोन कीजिए, कहिए कि आप यहाँ हैं, कहिए कि कैसी मुश्किल में फंसी हैं, और बेहतर होगा कि वो खुद लौट आए। ورنہ انٹرپول پولیس کے ذریعے بھی پکڑا جا سکتا ہے۔
اس نے کیا کیا ہے کرنل صاحب جو آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ کیا کچھ ثابت ہوا ہے؟ آپ کو ایک پرانی چیز ایک پرانے گھر کے تہہ خانے میں سے ملی، اور اس سے فرزاد سے کیا تعلق؟ مجھے یقین ہے وہ جب آئے گا تو سب بتا دے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔
میں بھی یہی کہہ رہا ہوں محترمہ، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ صرف اینٹک سامان کی بات نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ ان کے والد بھی ان چیزوں کی اسمگلنگ کرتے تھے، اگرچہ وہ بات ان کے انتقال کے بعد ہی فاش ہوئی۔
آپ خود ہی کہہ رہے ہیں اس کے والد۔
آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کا امکان بہت ہے کہ ملکی صاحب کا قتل اسی اسمگلنگ گروپ کے ذریعے ہوا ہو۔ آپ کے شوہر گنہگار نہ ہو تب بھی خطرے میں ہیں۔
قتل؟
بہتر ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا ساتھ نہ دینا آپ کے شوہر کے حق میں برا ہے اور آپ کے حق میں بھی۔
میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں آخر کیوں۔
فرزاد کا ایک بیگ چلا جانا، ایک اینٹک چیز کا ملنا جس کے لوگ 10 سال سے پیچھے پڑے ہیں، مرنے کے حد تک پیمان سہرابی کا مار کھانا، ان دونوں کوئی غیر معمولی کام، کوئی مشکوک فون یا کوئی دوسری مشکوک چیزیں، آپ نے کچھ نہیں دیکھا؟
نہیں کچھ نہیں۔
ٹھیک ہے ملکی صاحبہ، آپ جا سکتی ہیں، لیکن اگر ملکی صاحب نے فون کیا مجھے ضرور اطلاع دیں، کوشش کریں کہ وہ واپس آ جائیں، یہ سب کے لیے بہتر ہے، خاص طور سے ان کے لیے۔
اب کیا کرنا چاہیے؟
میں کیا بتاؤں آزر صاحبہ، میں اگر آپ کی جگہ ہوتا۔ پولیس سے نہیں بتایا تھا، لیکن جنہوں نے مجھے مارا ہے فرزاد کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ یورپ میں ہزاروں جگہ ہیں چھپنے کے لیے جہاں فرزاد صاحب چھپ بھی سکتے ہیں تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن یہاں پولیس بھی ان کے چکر میں ہے، اور وہ بھی جنہوں نے مجھے مارا ہے، اور اگر ان کا ہاتھ فرزاد تک پہنچ جائے تو۔ آزر صاحبہ، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن فرزاد صاحب سے کہیے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس منگلرز یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو وہ پولیس سے ملا ہوا ہے یا نمادرات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ موقع ملنے پر قیمت بڑھا کے بیچے۔ ان سے کہیے گا کہ
کیا ہوا بیٹا، کیا کام تھا، کیا کہہ رہے تھے؟
چلیے بابا، بعد میں بتاؤں گی۔
چلو میرے خیال میں کچھ دن میرے پاس ہی آ جاؤ تو بہتر ہے، تم بھی اکیلی نہیں رہو گی اور ہم بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ ہاں کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا چل کر تمہارا ضروری سامان گھر سے لے لیں، شاید یہ کام بہتر ہو کہ
ان دونوں کوئی غیر معمولی کام، کوئی مشکوک فون یا کوئی دوسری مشکوک چیزیں، آپ نے کچھ نہیں دیکھا؟
اچھا ایک بات، میں ایک ہفتے کے لیے فرانس جا رہا ہوں، کچھ کام ہے جن کو پورا کرنا ہے تاکہ اقامت کی مشکل پیش نہ آئے۔
وہ ٹیلی فون جو میری برتھ ڈے میں آ رہے تھے وہ اس کے باہر جانے سے متعلق تھے نا؟
لیکن فرزاد صاحب سے کہیے گا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس منگلر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو یا پولیس سے ملا ہوا ہے یا سامان ایسی جگہ چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ قیمت بڑھا کر بیچے۔
مجھے یقین ہے کہ فرزاد تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔
آپ کے شوہر گنہگار نہ ہو تب بھی خطرے میں ہیں، خطرے میں ہیں، خطرے میں ہیں۔
آذر، آذر کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
چلیں ایک ٹیلی فون بوتھ دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم جناب، آپ طبیعت کیسی ہے؟
کتے بھیجنے کو تھوڑی کہا تھا، ہڈی پسلی توڑ ڈالی۔
معاف کیجیے گا، آپ ہی تو کہا تھا ایسا مانے کوئی شک نہ کرے۔
فی الحال یہاں سے نکل لو اور میرے آس پاس مت بھٹکنا، میرے خیال سے میں تحت نظر ہوں۔
ضرور جناب، اگر کوئی اور کام پڑے تو ضرور بتائیے گا۔ لیے لیجیے،
جاؤ
اور ہمیں بھولیے گا نہیں۔
فرزاد فون تو اٹھاؤ، اٹھاؤ نا فون۔
ہیلو،
ہیلو فرزاد، السلام علیکم، میں ہوں آذر۔
کیسی ہو؟ کیوں جتنا فون کرتا ہوں فون نہیں اٹھاتی، پریشان ہو گیا؟
فرزاد میرے خیال میں میرا فون چیک ہو رہا ہے۔ دیکھو فرزاد، مجھے ایک بات تم سے کہنی ہے۔
میں سب کچھ جانتا ہوں، پیمان نے بتایا ہے، میں دو تین دن کے اندر آ جاؤں گا، پریشان نہ ہو۔
اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟
نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، صرف پریشان مت ہونا، سن رہی ہوں؟ پریشان
نہیں ہو سکتا۔
میں پریشان نہیں ہوں، میں آ کر بتا دوں گا کہ میں نے کچھ نہیں
کیا۔ نہیں فرزاد مت آؤ، تم نے کچھ نہیں کیا ہے لیکن اپنے بابا کے کاموں کی سزا بھگت رہے ہو، سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تب آؤ۔ یہاں ہم سب سے پوچھ تاچھ کر چکے ہیں، جہاں جاتی ہوں خطرناک لوگ پیچھے لگے رہتے ہیں۔
میں ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتا،
میں ڈرتی ہوں کہ کچھ تمہارے ساتھ ہو نہ جائے۔
باتیں تم سے کہنی ہوں گی، کچھ باتیں بتانی ہوں گی، تمہارے پاس بھی کچھ باتیں کہنے کے لیے ہوں گی، مجھے آنا ہی ہو۔
فرزاد میری بات سنو، اگر مجھے چاہتے ہو تو مت آؤ، میں تمہارے لیے پریشان ہوں۔
تمہاری بہت یاد آتی ہے آذر۔
مجھے بھی تمہاری یاد بہت آتی ہے فرزاد، بہت ہی زیادہ۔ فرزاد اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو میں کیا کروں گی؟
اس دنیا میں صرف تم میرے ساتھ ہو، سمجھ رہی ہو؟
فرزاد میری آواز سن رہے ہو؟ ہلو،
सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि आज़र अपने काम को सही तरह से अंजाम दे।
सही तरह से अंजाम देगी, मुझे यकीन है। हर औरत ऐसे हालात में यही करती है।
इसका मतलब फरजाद का काम खत्म हो गया। सिर्फ अगर कुछ दिन और लेट करे तो पुलिस उसका अरेस्ट वारंट भी जारी कर देगी, तब तो वो ईरान बिल्कुल आ ही नहीं सकता। मैडम आपको नहीं पता मिठाई खाने में कितना दर्द होता है, खास तौर से अगर आपको पता भी हो कि कैसे पिटने वाले हो।
तुम्हें भी इतना चूहा बनने की जरूरत नहीं है, इस वक्त सब कुछ तुम्हारे नफे में हो रहा है।
मेरे नफे में? आपको पता है मैंने कैसे बर्दाश्त करके वो नवादरात पुलिस के हवाले किए?
तो इसके बदले में कुछ दिन बाद फरजाद मजबूर हो जाएगा कि तुमको अपना तामुल इख्तियार वकील बनाए और अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दे। ये बुरा है क्या?
ये तमाम मुसीबतें और मुश्किलें नुशीन साहिबा की एक हंसी पे कुर्बान है।
बहुत मुश्किल दिन थे ना?
आप मुश्किल किस चीज को कहती हैं? खाना तो बुरा नहीं था और नाश्ता तो वाकई लाजवाब था, लेकिन खाना खाने के बाद 3-4 घंटे झेलते थे। रात के खाने की जगह फल और रोटी पनीर देते थे। हर कमरे में टीवी और फ्रिज था। जितने सीरियल आते हैं सब देखें। कहिए तो आपको कहानी सुनाऊं।
कुछ और तो खाओ।
अरे भाई थोड़ा आराम भी करने दीजिए, खाऊंगा।
हाँ तो और क्या हुआ?
जिस वक्त से आया हूं बोलता चला जा रहा हूं। आप भी तो कुछ कहें।
मैं भी तो सब कह चुकी हूं। मुर्तजा और शहाब आए, शम साहिबा उनके शोहर ने मदद की।
ये सब तो इंडियन फिल्म थी, असल बात बताइए।
असल बात तुम्हारी आज़ादी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंजाम तक पहुंच गई।
शुक्र साहिबा, बातें ना बदलिए। पैसे किसने दिए?
यकीन करो मैं नहीं जानती। यानी फरीदा एक दिन आई थी अपना घर बेचने की बात कर, मैंने बहुत मना किया, उससे बात करना भी छोड़ दी। लेकिन फरीदा कह रही थी कि अली रजा का किस्सा बहुत अच्छा बहाना है कि इतने दिन बाद एक घर में रहने के बाद थोड़ी तब्दीली आ जाएगी।
तब्दीली?
सच नहीं कह रही थी। कुछ दिन बाद जलाल साहब के साथ फूल और मिठाई लेके आए थे कि अच्छी खबर यह है कि अब घर नहीं बेचेंगे चूंकि पैसे मिल गए हैं। मैंने भी जितना पूछा कैसे तो कोई जवाब नहीं दिया। यानी फरीदा तो कुछ जानती ही नहीं थी। जलाल साहब भी कह रहे थे कि तुम्हारे जानने से क्या फायदा, अहम तो यह है कि मिल गया। क्या तुमने खुद नहीं पूछा?
क्यों नहीं, लेकिन मैं उठा लेता हूं। जी हेलो।
अस्सलाम वालेकुम, मैं नुशीन मलिकी हूँ।
अलैकुम अस्सलाम।
माफ़ कीजिएगा डिस्टर्ब किया, आपकी अम्मी के खैरियत के लिए फ़ोन किया था।
जी शुक्रिया, ठीक है।
जी बहुत खुशी हुई कि आपकी आवाज़ भी सुन ली। माफ़ कीजिएगा शायद गलत वक्त पर फ़ोन किया, सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
कौन था?
आज मैं बर्तन धो लूंगा।
नहीं बताओगे कौन था?
कोई नहीं कोई नहीं।
अस्सलामुअलैकुम आज़र साहिबा, खैरियत तो है?
बैठो।
आपकी तबीयत कैसी है? फरजाद साहब ने सफर से पहले आपका ख्याल रखने को कहा था मुझे। कहा था कोई भी काम हो बगैर तकल्लुफ बता दीजिएगा। अब मैं हाजिर खिदमत हूँ। कुछ ऑर्डर दिया है आपने?
एक सवाल पूछती हूँ, सच सच बताना, भटकाने की कोशिश मत करना। वो क्यों पेरिस गया? कोई गलत काम करता है, स्मगलर है? ये नवादिरात की बात क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है?
ये सब एक ही सवाल थे।
पैमान, फरजाद स्मगलिंग करता है?
नहीं।
तो फिर अचानक क्यों गया? वो फोन किसके आया करते थे? क्यों जाने के बाद अब नहीं आते? कहना मत नहीं जानते, क्योंकि यकीन नहीं होगा।
इतना गुस्सा किस लिए?
अब इतना गुस्सा किस लिए?
लिए आप क्या लेना पसंद करेंगे?
आप क्या लेंगी?
मैं कुछ नहीं खाऊंगी।
मेरे लिए स्पेशल आइसक्रीम ले आइए प्लीज।
जरूर।
मैंने पूछा क्यों आप इतना गुस्सा कर रही हैं?
गुस्से में हूँ इसलिए कि फरजाद का वारंट पेपर आया है, इसका मतलब समझते हो?
वारंट पेपर?
यानी आप मुझे यकीन दिला रहे कि वो स्मगलर नहीं है और गलती से ये वारंट पेपर आया है? खुदा के वास्ते ये कह दो कि वो लोग गलत सोच रहे हैं। कह दो कि ये सब झूठ है और फरजाद के फरिश्तों को भी इसकी खबर नहीं है। मैं फरजाद को जानती हूँ, वो ऐसा काम नहीं कर सकता।
जी
कहो कि मैं गलत नहीं कह रही हूँ।
अज़र साहिबा, मुझे समझने की कोशिश की है, मैं इस बीच में फंस गया हूँ। आप मेरी बहन जैसी हैं और फरजाद मेरे भाई जैसा। आप बहन हैं लिहाजा हकदार हैं कि आपको असल बात बताऊँ, लेकिन वो भाई है मेरा, इसलिए बाज़ बातें नहीं बता सकता। अज़र साहिबा, मैंने फरजाद से वादा किया कि कुछ नहीं बताऊँगा।
प्लीज फैमान साहब, कुछ तो कहिए, मुझसे बताइए क्यों यहाँ से चला गया? आप ये तो नहीं चाहते कि आपके पैर पड़ूं?
जी कैसी बात है अज़र साहिबा। देखिए मैं आखिर मैं ही क्यों?
मुझसे कहिए, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं जानने की हकदार हूँ।
ठीक, लेकिन मुझसे कुछ नहीं सुना है आपने? और वो फोन की बात, एक लड़की, मैं ऐसा कर रहा था, फरजाद का बैरून मुल्क जाना उनकी बाज बदअखलाकियों का नतीजा है, इस मंगलिंग से उसका कोई रब नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसकी वजह कुछ और ही थी और है, आप समझ नहीं है ना?
परेशान ना हो, आप समझ रहे हैं मेरे साथ क्या कर रहे हैं? आप समझते हैं कि ना बोलने से मेरी मदद करेंगे? आप समझते हैं मेरे हक में भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं? आप समझते हैं मेरा दिल पत्थर का है?
ऐसा साहिबा, ऐसा क्यों कह रही हैं? प्लीज ऐसा मत कहें।
तो फिर अच्छी बात क्या है मेरी बर्बादी?
देखिए आप जरीन साहिबा के पास जाएं, वो भी एक औरत है, आपकी बात ज्यादा बेहतर समझेंगी। किसी से उनका कोई वादा भी नहीं है। और हाँ,
और क्या?
जरीन साहिबा सब कुछ जानती हैं, सब कुछ, मुझसे भी ज्यादा।
पैमान, पैमान ने मेरे पास भेजा है कि मैं क्या कहूँ?
सब कुछ।
मेरी बेटी, मैं कुछ नहीं जानती जो तुमसे बताऊँ। तुम भी बेहतर है अपने घर जाओ और अपने शौहर का इंतजार करो।
जरीन साहिबा, प्लीज मुझे इस बरज़ख में मत डालिए।
कैसा बरज़ख हाजर? कुछ हुआ ही नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं।
लेकिन पैमान ने कहा है कि आप कुछ चीजें जानती हैं।
पैमान की बातें छोड़ो। कॉफी पियोगी या चाय?
कुछ भी हो, शुक्रिया।
यकीन करो, बुरे हालात हैं। शायद ही कोई मेरी जगह पर रहना पसंद करेगा। मैं एक माँ हूं। नौशीन और फरजाद में कोई फर्क नहीं समझती, और बहुत दिनों से फरजाद की उस दिन की बदतमीजियां भी भुला चुकी।
अगर वो आपका बेटा है तो मैं भी आपकी बहू। जो कुछ भी है मुझे बताइए। मौत भी एक बार, रोना धोना भी एक बार।
देखो बेटा, फरजाद का मामला एक बहुत पुराना मामला है कि बहुत बुरे मौके पर खुला। वो तुम्हें बहुत चाहता है, लेकिन बहरहाल हर इंसान का एक माजी होता है कि जिससे भाग नहीं सकता। आज़र, इस बात को भूल जाओ।
आप एक औरत हैं, अगर मेरी जगह होती तो क्या करती हैं आप?
हकीकत तो यह है कि मैं भी पिछले कई बरसों में नहीं जानती थी कि फरजाद वहाँ क्या कर रहा है। शायद अगर पहले इत्तला मिलती तो कुछ करने की कोशिश करती।
किस चीज़ को अगर पहले जानती? जो बात कहनी है कह दीजिए, मुझ में अभी सुनने की ताकत है।
तो याद रखना कि तुम्ही ने मुझसे ख्वाहिश की थी। तुम्हें डर है कि तुम्हारा शौहर कहीं स्मगलर ना हो?
मेरा सवाल यही है।
अगर तुम्हारा शौहर 4 साल के लिए जेल चला जाए बेहतर है, या ये कि दूसरी औरत का साया तुम्हारी जिंदगी में हो?
दूसरी औरत? एक दूसरी औरत?
दूसरी औरत अपने होने वाले बच्चे के साथ?
नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
मुझे भी उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है कि ऐसा ना हो।
तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे इस बात से बेखबर रखा?